समूह में अब हम द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में चर्चा करेंगे। सी एच कूली के द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक समूह जब काफी लोकप्रिय हो गया तो विद्वानों ने इसके प्रतिकूल सामाजिक व्यवस्था की बात कही जो द्वितीयक समूह के रूप में प्रचलित हुआ। जो समूह प्राथमिक नहीं है उसे लोगों ने द्वितीयक समूह का नाम दिया। इस तरह के समूह में आमने सामने का संबंध काफी कमजोर होता है। समूह के सदस्यों के बीच में घनिष्ठता की कमी होती है, जैसे दुकानदार ग्राहक का संबंध, डॉक्टर रोगी का संबंध, नेता एवं अनुयायी का संबंध, दफ्तर में ऑफिसर एवं किराने का संबंध इत्यादि। ऐसे संबंधों को हम लोग जानबूझकर या योजनाबद्ध ढंग से निर्माण करते हैं। द्वितीयक समूह में संबंधों में अस्थायित्व की कमी एवं संबंधों में छिछलापन का होना स्वाभाविक है, क्योंकि आमतौर पर इसका आकार प्राथमिक समूह की तुलना में काफी बड़ा होता है। सदस्यों के बीच हमेशा आमने सामने का संबंध नहीं हो पाता है। लोग ऐसे समूहों का निर्माण स्वार्थवश करते हैं, अतः स्वाभाविक रूप से सदस्यों के बीच में संवेगात्मक या भावात्मक लगाव की कमी होती है। द्वितीयक समूह के बारे में स्टीवन कोल ने स्पष्ट कहा है कि सेकेंडरी ग्रुप्स आर दोज विच आर लार्जर एंड इन विच द इंट्रैक्शन इज मोर इम्पर्सनल। कोल के इस विचार से यही स्पष्ट होता है कि द्वितीयक समूह के सदस्यों के बीच में संबंधों की आत्मीयता की कमी होती है। प्राथमिक समूह की तुलना में द्वितीयक समूह के अंतर्गत लोगों के बीच अंतःक्रिया की मात्रा काफी कम पाई जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक इसलिए है कि द्वितीयक समूह का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। द्वितीयक समूह की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एंथोनी गिडेंस ने लिखा है कि वह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत लोग नियमित रूप से मिलते तो हैं लेकिन उनके संबंध मुख्य रूप से अव्यक्तिक होते हैं। व्यक्तियों के बीच संबंध गाढ़े नहीं होते हैं। लोग सामान्यतः एक दूसरे के निकट तभी आते हैं जब उनके सामने कोई निश्चित व्यवहारिक उद्देश्य होता है। द्वितीयक समूह की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं की यहाँ चर्चा की जा रही है जो इस प्रकार है। पहला, बड़ा आकार। प्राथमिक समूह की तुलना में द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि सदस्यों की संख्या हजारों या लाखों तक भी हो सकती है, जैसे राज्य, राष्ट्र, शिक्षण संस्थाएं इत्यादि। दूसरा, अप्रत्यक्ष एवं अव्यक्तिक संबंध। समूह जब विशाल हो जाता है तब सदस्यों में शारीरिक समीपता नहीं रह जाती है। ऐसी स्थिति में संबंध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष हो जाते हैं, अर्थात यह संबंध संपर्क के विभिन्न साधनों जैसे टेलीफोन, डाक, पत्र पत्रिकाएं आदि से स्थापित होती हैं। अप्रत्यक्ष संबंध होने से संबंध भी अव्यक्तिक हो जाते हैं। इस प्रकार इन समूहों के सदस्यों में व्यक्तिगत घनिष्ठता बहुत कम पाई जाती है, यह केवल औपचारिकता तक ही सीमित रहती है। व्यक्ति की पहचान उसके औपचारिक पद के आधार पर ही होता है। उदाहरण स्वरूप, एक श्रमिक संगठन में सदस्यों की पहचान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या साधारण कार्यकर्ता के रूप में होती है। इस प्रकार की पहचान में व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व एवं उसके विभिन्न पक्ष नहीं झलकते हैं। तीसरा, प्रतिस्पर्धा की भावना। ऐसे समूहों के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। व्यक्ति किसी भी प्रकार के द्वितीयक समूह में हो अपनी कार्यकुशलता एवं क्षमता बढ़ाकर अन्य लोगों से आगे निकलना चाहता है। कुछ समूह अपने सदस्यों में प्रतिस्पर्धा के महत्व को बढ़ावा देते हैं। चौथा, ऐच्छिक सदस्यता। द्वितीयक समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐसे समूहों की सदस्यता ग्रहण करना या किसी क्रियाकलाप में भाग लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसे समूहों की सदस्यता को ग्रहण करता है और छोड़ देता है। पांचवा, अस्थायित्व में कमी। प्राथमिक समूह की तुलना में द्वितीयक समूह थोड़ा कम अस्थायी होता है। द्वितीयक समूह का आसानी से निर्माण व विघटन होता है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे सदस्यता को त्याग सकता है और नए द्वितीयक समूह का जरूरतवश निर्माण कर सकता है। कभी-कभी जब हमारे उद्देश्यों या व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हो जाती है तो हम समूह के सदस्यता को त्याग देते हैं या अलग हो जाते हैं। जैसे महाविद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उसे छोड़ देते हैं और नए विद्यार्थी वर्ग में नामांकन लेकर पुनः उपस्थित हो जाते हैं। छठा, एक योजनाबद्ध व्यवस्था। हम लोग द्वितीयक समूह का योजनाबद्ध तरीके से निर्माण करते हैं। जब समाज में कुछ लोगों का सामान्य उद्देश्य होता है और उसे पूरा करने के लिए बहुत व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है तो लोग विचार विमर्श कर योजनाबद्ध तरीके से ऐसे समूहों का निर्माण करते हैं। आधुनिक समाज में ऐसे समूहों का विशेष महत्व है। जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है वैसे वैसे समाज में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए बहुत किस्म के द्वितीयक समूहों का निर्माण किया जा रहा है। द्वितीयक समूह आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता है। सातवां, सीमित स्वार्थों की पूर्ति, ग्रेटिफिकेशन ऑफ लिमिटेड नीड्स। व्यक्ति किसी द्वितीयक समूह का सदस्य मुख्यतः सीमित स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही करता है। दूसरी ओर प्राथमिक समूह सदस्यों के एकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उदाहरण स्वरूप, क्लब हमारी सीमित आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसके विपरीत परिवार में हमारी सभी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आठवां, सदस्यता की सीमित अवधि, शॉर्ट लिव्ड मेंबरशिप। प्राथमिक समूहों की तुलना में द्वितीयक समूह की सदस्यता की अवधि सीमित होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि द्वितीयक समूह हमारे सीमित स्वार्थों की ही पूर्ति करता है। अतः वैसी आवश्यकताओं की पूर्ति होते ही हम उस द्वितीयक समूह की सदस्यता त्याग देते हैं। इसके विपरीत प्राथमिक समूह की सदस्यता प्रायः जीवन पर्यंत चलती है। नौ, औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द्वितीयक समूहों का संगठन औपचारिक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे समूहों में पद एवं भूमिकाओं का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में भूमिकाएं परस्पर व्यापी नहीं होती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक राजनीतिक दल में अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष की भूमिका भिन्न भिन्न है एवं अध्यक्ष से कोषाध्यक्ष की भूमिका की आशा नहीं की जा सकती है और न ही कोषाध्यक्ष से अध्यक्ष की भूमिका की। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के बीच अंतर। ऊपर के विवरण के आधार पर प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में हम निम्नलिखित अंतर कर सकते हैं। पहला, प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, अतः इसका आकार छोटा होता है, जैसे परिवार, पड़ोसी इत्यादि। द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, अतः इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जैसे स्कूल या कॉलेज में शिक्षा, माफ करिए इसे फिर से सुनिए, जैसे कॉलेज या स्कूल में कक्षा के सहपाठी। दूसरा, प्राथमिक समूह में भौतिक समीपता के कारण आमने सामने का संबंध होता है, जबकि द्वितीयक समूह में भौतिक दूरी होने के कारण आमने सामने का संबंध नितांत आवश्यक नहीं है। तीसरा, प्राथमिक समूह में हम की भावना प्रबल होती है, इसलिए यहाँ सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है, परंतु द्वितीयक समूह में भौतिक दूरी होने के कारण हम की भावना प्रायः प्रबल नहीं होती है। वहाँ आई फीलिंग या दे फीलिंग पाया जाता है। चौथा, प्राथमिक समूह के सदस्यों में संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, पर द्वितीयक समूह के सदस्यों में संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। पांचवा, प्राथमिक समूह स्वतः पनपते हैं, उन्हें जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से स्थापित नहीं किया जाता, पर द्वितीयक समूहों की स्थापना की जाती है, ये स्वतः नहीं पनपते हैं। छठा, प्राथमिक समूह के उद्देश्य दूरगामी होते हैं, पर द्वितीयक समूह के उद्देश्य अपेक्षाकृत शीघ्र हासिल करने वाले होते हैं। सातवा, प्राथमिक समूह के उद्देश्य निश्चित और सीमित नहीं होते हैं, एक या दो उद्देश्यों की पूर्ति के बाद ये भंग नहीं होते, अतः ये अधिक अस्थायी होते हैं। द्वितीयक समूह के उद्देश्य निश्चित होते हैं, अतः उद्देश्यों की पूर्ति के बाद द्वितीयक समूह भंग हो जा सकता है। यही कारण है कि ये उतने अस्थायी नहीं होते हैं। आठवां, प्राथमिक समूह का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में पाया जाता रहा है। द्वितीयक समूह अपेक्षाकृत प्राचीन नहीं है। शहरीकरण एवं उद्योगीकरण के बाद ही इनकी प्रधानता समाज में बढ़ी है। वे आसानी से बनते और बिगड़ते रहते हैं। 9. प्राथमिक समूह में सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए अनौपचारिक उपाय यथा व्यंग, उपहास आदि किए जाते हैं, पर द्वितीयक समूह में सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक उपाय यथा नियम कानून, पुलिस आदि का सहारा लिया जाता है। 10. व्यक्ति के समाजीकरण में प्राथमिक समूह का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी के सहारे व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। ठीक इसके विपरीत समाजीकरण में द्वितीयक समूह का योगदान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, अतः व्यक्तित्व की प्रकृति द्वितीयक समूहों में निर्धारित नहीं होती। 11. प्राथमिक समूह के द्वारा व्यक्तियों में मूलभूत सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे पारस्परिक सहयोग, सहानुभूति इत्यादि। द्वितीयक समूह में कुछ विशिष्ट गुणों का विकास होता है, जैसे कार्य करने की कोई विशिष्ट दक्षता या योग्यता इत्यादि। प्राथमिक एवं द्वितीय समूह की अवधारणा की तुलना सैद्धांतिक स्तर पर जर्मन समाजशास्त्री टॉनिच के जिमेनो स्काफ्ट एवं गेस्लो स्काफ से की जा सकती है, जिसका अर्थ क्रमशः समुदाय यानी कम्युनिटी एवं समाज यानी सोसाइटी होता है। समुदाय की तुलना प्राथमिक समूह एवं समाज की तुलना द्वितीयक समूह से की जाती है। इन दोनों की विशेषताओं में काफ़ी समानता है। कूले के प्राथमिक समूह की अवधारणा के तुलना में टॉनिच का जिमेंसकाफ्ट कई दो दशक से भी ज़्यादा पुराना है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की तुलना समकालीन फ्रांसीसी समाजशास्त्री डार्कहाइम की यांत्रिक या सहज एकता मैकेनिकल एवं अवयवी एकता यानी ऑर्गेनिक सोलिडरिटी से भी क्रमशः की जा सकती है। डार्कहाइम ने इस अवधारणा का प्रतिपादन अपने पुस्तक द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1956 में किया था। सोरोकिन का पारिवारिक संबंध यानी फैमिलिस्टिक रिलेशंस एवं संविदात्मक संबंध यानी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस क्रमशः प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की विशेषताओं से मिलता जुलता है। संक्षेप में हम यही कहना चाहेंगे कि कूली का प्राथमिक समूह, टॉनिच का जिमेंसकाफ्ट एवं डार्कहाइम की यांत्रिक एकता करीब करीब समान किस्म की सामाजिक व्यवस्था का सूचक है। रॉबर्ट रेडफील्ड की लिटिल कम्युनिटी की लगभग इसी से मिलती जुलती अवधारणा है। संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में किया था। इसका उपयोग उन्होंने स्कूल के बच्चों के एक अध्ययन के संदर्भ में किया था। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों का व्यवहार उच्च वर्ग से आने वाले बच्चों से मिलता जुलता था। निम्न वर्ग के बच्चे अपने समूह के अनुरूप व्यवहार नहीं करके एक ऐसे समूह के अनुरूप व्यवहार कर रहे थे जिसके वे स्वयं सदस्य नहीं थे। हाइमन के अनुसार उच्च वर्ग वाले बच्चों का समूह निम्न वर्ग के बच्चों के लिए संदर्भ समूह का कार्य कर रहा था। हाइमन के शब्दों में उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बच्चों के लिए संदर्भ समूह हुआ यानी रेफरेंस ग्रुप। हाइमन के पश्चात कई मनोवैज्ञानिकों जैसे मुजफ्फर शेरिफ, न्यूकॉम एवं कुछ समाजशास्त्रियों जैसे आरके मार्टन, टर्नर एवं स्टूफर ने संदर्भ समूह के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संदर्भ समूह की अवधारणा मुख्यतः इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है कि मानव व्यवहार तथा उसके व्यक्तित्व के विकास में प्रायः कुछ गैर सदस्यता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं गैर सदस्यता समूहों के लिए जिनकी मानव के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हाइमन ने संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप जैसे शब्द का प्रयोग किया है। इन्हें संदर्भ समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समूह किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसा संदर्भ प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर वह व्यक्ति न सिर्फ अपना एवं अपनी स्थिति का भी मूल्यांकन करता है बल्कि दूसरों की हैसियत का भी मूल्यांकन करता है। उदाहरण स्वरूप, अगर एक निम्न आर्थिक वर्ग का लड़का उच्च आर्थिक वर्ग के जीवन शैली या उसमें प्रचलित नियम एवं विचारों से प्रभावित होता है और अपना एवं अपनी सदस्यता समूह या निम्न आर्थिक वर्ग के अन्य सदस्यों का मूल्यांकन उच्च आर्थिक वर्ग में प्रचलित व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर करता है, तो वैसी स्थिति में उच्च आर्थिक वर्ग उस निम्न आर्थिक वर्ग के लड़के के लिए संदर्भ समूह कहलाता है। संदर्भ समूह की अवधारणा को परिभाषित करते हुए श्री एवं श्रीमती शेरिफ ने कहा है कि रेफरेंस ग्रुप आर दोज ग्रुप टू विच इंडिविजुअल रिलेट्स हिमसेल्फ एज ए पार्ट और टू विच ही एस्पायर्स टू रिलेट हिमसेल्फ साइकोलॉजिकली इन एवरीडे लैंग्वेज। रेफरेंस ग्रुप आर दोज ग्रुप्स विथ विच ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और एस्पायर्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ। अर्थात किसी व्यक्ति का संदर्भ समूह वे समस्त समूह हैं जिसका कि वे वह अपने आप को हिस्सा मानते हैं या जिसके साथ वह अपने को मानसिक रूप से जोड़ता है एवं जिन समूह की सदस्यता की चाह उसमें होती है। इस परिभाषा के अनुसार ही ऊपर दिए गए उदाहरण में उस निम्न आर्थिक वर्ग के लड़के के लिए उच्च आर्थिक वर्ग एक संदर्भ समूह कहलाता है। शेरिफ के अनुसार संदर्भ समूह एक मानसिक स्थिति है जिसमें किसी भी समूह के सदस्य किसी दूसरे समूह से जिसे वे श्रेष्ठ समझते हैं अपना मानसिक संबंध जोड़ते हैं एवं स्वयं का उस अन्य समूह के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करते हैं। शेरिफ ने यह कहा है कि ऐसी स्थिति अर्थात संदर्भ समूह स्थिति अधिकतर औद्योगिक समाजों में उत्पन्न होती है। इन समाजों में अत्यधिक विभाजन के कारण समूहों की संख्या बढ़ जाती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अधिक आते जाते हैं। सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है, इसलिए कुछ व्यक्तियों को अपने वास्तविक समूह के संबंध में भ्रम होता है। इन परिस्थितियों में लोग दूसरे समूह को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। जॉनसन ने संदर्भ को परिभाषित करते हुए इसकी दो तीन ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया है जिसकी चर्चा श्री एवं श्रीमती शेरिफ के द्वारा की गई परिभाषा में नहीं की गई है। जॉनसन के ही शब्दों में, एनी ग्रुप मे बी अ रेफरेंस ग्रुप फॉर ए गिवन पर्सन, ए ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स और ऑन टू विच ही डज नॉट बिलोंग्स, एन इंट्रैक्शन ग्रुप और स्टेटेड ग्रुप्स और अ ग्रुप हुज मेंबर्स आर अवेयर ऑफ देयर इन्फ्लुएंस और ऑन विच मेंबर आर नॉट, और ए स्टैटिकल कैटेगरी, एन एक्चुअल ग्रुप और इवन एन इमेजनरी वन। इस परिभाषा से दो बातें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। प्रथम तो यह कि संदर्भ समूह से हमारा तात्पर्य सिर्फ किसी व्यक्ति को की गैर सदस्यता समूह से नहीं है, बल्कि व्यक्ति की सदस्यता समूह से भी है, वह भी उसका संदर्भ समूह हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी वास्तविक समूह के अतिरिक्त कोई काल्पनिक समूह भी संदर्भ समूह हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, कार्ल मार्क्स का वर्गहीन समाज की अवधारणा एक काल्पनिक समाज की अवधारणा है। एक कट्टर मार्क्सवादी की तरह यह वर्गहीन समाज की अवधारणा जीवन का लक्ष्य हो सकता है। आरके मटन ने बताया है कि जिस ढंग से कोई समूह संदर्भ समूह हो सकता है, उसी तरह एक व्यक्ति भी किसी के लिए संदर्भ व्यक्ति यानी रेफरेंस इंडिविजुअल हो सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति भी एक संदर्भ समूह के रूप में स्थापित हो सकता है। विवेकानंद, कबीर दास, रविन्द्रनाथ ठाकुर, B.R. अंबेडकर एवं महात्मा गांधी कुछ ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं जिनकी जीवन शैली, जीवन दृष्टि एवं विचारों को एक आदर्श मानकर बहुत लोग अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। लोग उनसे प्रभावित होकर उनका अनुसरण करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आरके मटन ने भूमिका प्रारूप आदर्श यानी रोल मॉडल कहा है। प्रसिद्ध अमेरिकन सामाजिक मनोवैज्ञानिक न्यूकॉम ने संदर्भ समूह सिद्धांत के रूप में सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह जैसी अवधारणाओं को प्रतिपादित कर इस सिद्धांत को और भी समृद्ध बनाया है। संक्षेप में, किसी व्यक्ति का सकारात्मक संदर्भ समूह वह समूह है जिसका प्रचलित नियम कानून मूल्य आदि को वह सही मानता है और उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर नकारात्मक संदर्भ समूह यानी निगेटिव रेफरेंस ग्रुप किसी व्यक्ति के लिए वह संदर्भ समूह है जिसके प्रचलित नियम कानून ये मूल्य को वह न सिर्फ अस्वीकार करता है बल्कि प्रायः उस समूह के प्रचलित नियम एवं मूल्यों के विपरीत नियम तथा मूल्यों को स्वयं मानता है या अपने समूह में उसको प्रचारित करता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में उस निम्न आर्थिक वर्ग के लड़के के लिए उच्च आर्थिक वर्ग सकारात्मक संदर्भ समूह का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निग्रो समूह के प्रति गोरे समूहों का मनोभाव या भारतीय संदर्भ में दलितों या पिछड़े जाति के प्रति उच्च जाति के लोगों का मनोभाव नकारात्मक संदर्भ समूह का एक अच्छा उदाहरण है। उपयुक्त विश्लेषणों को ध्यान में रखते हुए संदर्भ समूह की अवधारणा से संबंधित निम्न तथ्यों की चर्चा की जा सकती है। पहला, किसी व्यक्ति के लिए कोई भी समूह, चाहे वह उसकी सदस्यता समूह हो या गैर सदस्यता समूह, संदर्भ समूह बन सकता है। कभी कभी कोई व्यक्ति भी संदर्भ व्यक्ति हो सकता है। किसी समूह या व्यक्ति को संदर्भ समूह या संदर्भ व्यक्ति कहे जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह समूह उस व्यक्ति विशेष के लिए कोई संदर्भ फ्रेम यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अवश्य प्रदान करे जिसके आधार पर व्यक्ति अपना या दूसरों का मूल्यांकन कर सके। एक काल्पनिक समूह भी किसी व्यक्ति का संदर्भ समूह बन सकता है। संदर्भ समूह के प्रभावों के आधार पर उसे सकारात्मक या नकारात्मक संदर्भ समूह कहा जा सकता है। जिस प्रकार एक समूह के विभिन्न सदस्यों का संदर्भ समूह भिन्न भिन्न हो सकता है, उसी प्रकार विभिन्न समूहों का संदर्भ समूह कभी कभी एक भी हो सकता है। व्यक्ति के जीवन से संदर्भ समूह स्थिर नहीं होता है बल्कि उसकी स्थिति, रुचि, मनोवृत्ति आदि में परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के संदर्भ समूह में भी परिवर्तन होता है। संदर्भ समूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। प्रजातीय अंतर संबंधों के अध्ययन के क्रम में न्यूकॉम ने कहा है कि अमेरिका में गोरे लोगों की सामाजिक स्थिति काले यानी निग्रो लोगों की अपेक्षा उचित होती है। परिणाम स्वरूप निग्रो लोग अचेतन रूप से गोरे लोगों के मूल्यों को अपनाना चाहते हैं और निग्रो लोग अपने बच्चों का समाजीकरण गोरे लोगों की तरह ही करते हैं। अतः गोरे लोगों की के सामाजिक मूल्य निग्रो के लिए सकारात्मक संदर्भ समूह का कार्य करते हैं। इसके विपरीत गोरे व्यक्ति निग्रो से एक प्रकार की सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं और निग्रो को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में निग्रो गोरे व्यक्तियों के लिए नकारात्मक संदर्भ समूह का कार्य करते हैं। दूसरा, परस्पर विरोधी और एक दूसरे के पूरक संदर्भ समूह, कॉन्फ्लिक्टिंग रेफरेंस ग्रुप एंड म्यूचुअली सस्टेनिंग रेफरेंस ग्रुप। आर के मर्टन ने परस्पर विरोधी संदर्भ समूह और एक दूसरे के पूरक संदर्भ समूह की चर्चा की है। कभी कभी हम अपनी अभिलाषाओं आदि के प्रभाव में आकर कुछ ऐसे संदर्भ समूहों की ओर आकृष्ट होते हैं जो आपस में विरोधी होते हैं। इसके विपरीत कुछ संदर्भ समूह व्यक्ति के लिए आपस में पूरक के रूप में कार्य करते हैं। समान आयु समूह और समान सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले समूह संदर्भ समूह के रूप में एक दूसरे के पूरक होते हैं। तीसरा, तुलनात्मक एवं आदर्शक संदर्भ समूह। तुलनात्मक संदर्भ समूह उन समूहों को कहते हैं जिनसे हम अपने समूह की तुलना करते हैं और तब यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे समूह में कौन सा मूल्य ऐसा है जो अन्य समूहों में है। आदर्शात्मक संदर्भ समूह उन समूहों को कहते हैं जिनके मानदंड एवं मूल्यों को हम आदर्श मानते हैं एवं यह समझते हैं कि हमें इन्हें अपनाना चाहिए। संदर्भ समूह के चयन में अनेक तथ्यों का समावेश होता है। एक व्यक्ति इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही संदर्भ समूह का चुनाव करता है। मॉर्टन ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर हमारा ध्यान खींचा है। पहला, समूह की प्रकृति खुली है या बंद। वेदर द नेचर ऑफ ग्रुप इज ओपन और क्लोज्ड। अस्तरण की प्रवृत्ति, अस्तरण की प्रकृति, नेचर ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। समूह के नियमों में विचलित व्यवहार के प्रति सहनशीलता और उन नियमों के प्रति अपेक्षित समरूपता। चौथा, सदस्य किस सीमा तक अपने आप को समूह के साथ संबंध रखते हैं। पांचवा, समूह की तुलनात्मक शक्ति यानी कंपैरेटिव पावर ऑफ ग्रुप। छठा, तुलनात्मक रूप से समूह की कितनी प्रतिष्ठा है यानी प्रेस्टीज ऑफ ग्रुप्स। सातवा, समूह के अस्थायित्व की संभावना। और आठवा, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण की प्रकृति कैसी है। संदर्भ समूह का मानव व्यवहार पर प्रभाव। जहां तक संदर्भ समूह का मानव व्यवहार के और व्यक्तित्व निर्माण पर प्रभाव का प्रश्न है, स्पष्ट है कि संदर्भ समूह चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों ही परिस्थितियों में ये मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पहले मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण और व्यवहार पर सकारात्मक संदर्भ समूह के प्रभावों की चर्चा की जाएगी। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का सकारात्मक संदर्भ समूह उसका आदर्श या मॉडल समूह होता है। फलस्वरूप व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने सकारात्मक समूह के आदर्शों के अनुरूप ही अपने आप को ढालने की कोशिश करता है या उस समूह में प्रचलित नियम, मूल्यों, विचारों आदि के अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करता है। यहाँ पुनः दो बातें हैं। अगर व्यक्ति विशेष का सकारात्मक समूह उसकी सदस्यता समूह है, तो स्वाभाविक है कि वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति अपने संदर्भ समूह के साथ अपने को समायोजित करने का प्रयास करेगा। दूसरे शब्दों में, वैसे परिस्थिति में वह व्यक्ति स्वतः ही अपने समूह में प्रचलित नियम कानूनों के अनुरूप ही व्यवहार करेगा, जिसे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में काफी सहायता मिलेगी। दूसरी ओर, अगर किसी व्यक्ति का सकारात्मक समूह कोई गैर सदस्यता समूह है, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति का व्यवहार कुछ हद तक अपनी सदस्यता समूह में नियम विरोधी होगी। पुनः किस हद तक उस व्यक्ति का व्यवहार समाज में वांछित या अवांछित माना जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की सदस्यता समूह की प्रकृति कैसी है, अर्थात समूह मुक्त है अथवा बंद। अगर उसका समूह मुक्त है, तो उसके व्यवहार को साधारणतः अवांछनीय नहीं माना जाएगा। परंतु अगर उसकी सदस्यता समूह की प्रकृति बंद है, तो उसका व्यवहार बहुत हद तक अवांछनीय माना जाएगा। उपर्युक्त तथ्य से मानव व्यवहार पर सकारात्मक संदर्भ समूह का प्रभाव इस रूप में स्पष्ट होता है कि सकारात्मक संदर्भ समूह प्रायः हर हाल में व्यक्ति के जीवन में सामाजिक गतिशीलता पैदा करती है। पुनः यह तथ्य मुक्त समाजों के संदर्भ में अधिक स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। यद्यपि बंद समाज में भी सकारात्मक संदर्भ समूह कुछ हद तक सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संदर्भ में इसका सबसे अच्छा प्रमाण M.N. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं में देखने को मिलता है। आर.के. मॉर्टन ने संदर्भ समूह के संदर्भ में पूर्वाभ्यासी समाजीकरण यानी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की भी चर्चा की है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अगर किसी गैर सदस्यता समूह से प्रभावित होता है, तो उस समूह में व्यक्ति वास्तविक सदस्यता प्राप्त होने के पहले ही वह अपने आप को उस समूह के मानदंडों एवं मूल्यों के अनुसार ढालना प्रारंभ कर देता है। इसका एक स्पष्ट परिणाम यह है कि भविष्य में अगर उस व्यक्ति को उसके अपने संदर्भ समूह में सदस्यता प्राप्त हो जाती है, तो समूह के साथ अभियोजन करने में उसे कठिनाई नहीं होती है। पुनः संदर्भ समूह के प्रभावों की चर्चा करते हुए मॉर्टन ने सीमांत मानव यानी मार्जिनल मैन एवं सीमांत समुदाय यानी मार्जिनल कम्युनिटी की अवधारणा की चर्चा की। प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है उसके साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, और जिस गैर सदस्यता समूह की सदस्यता वह चाहता है वहाँ उसे हीन दृष्टि से देखे जाने के कारण सदस्यता नहीं प्राप्त होती है। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति दो समूहों की सीमाओं पर अर्थात अपनी सदस्यता समूह एवं उस गैर सदस्यता समूह पर खड़ा रहता है, इसलिए उसे सीमांत मानव कहा जाता है। यह स्थिति एक समुदाय के साथ भी हो सकती है जो मुख्यतः किसी समाज में अल्पसंख्यक समुदाय होता है। भारतीय संदर्भ में ईसाइयों का समुदाय इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जो भारत में रहते हुए भी पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हैं, परंतु जिन्हें पश्चिमी समाज अपने बराबर नहीं मानता है। नकारात्मक संदर्भ समूह का प्रभाव भी मानव समाज, मानव व्यवहार और व्यक्तित्व निर्माण पर देखने को मिलता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि व्यक्ति अपने नकारात्मक संदर्भ समूह के विपरीत अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, और इस अर्थ में नकारात्मक संदर्भ समूह उसे एवं उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसके साथ ही मनुष्य का व्यवहार अपने नकारात्मक संदर्भ समूह के सदस्यों के प्रति प्रायः गलत धारणाओं, भ्रम एवं अविश्वास की भावना से प्रेरित होता है। इसका परिणाम हम आए दिन प्रजातीय संघर्ष, सांप्रदायिक दंगे, जाति संघर्ष आदि के रूप में देखने को मिलता है। उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि संदर्भ समूह की अवधारणा न सिर्फ मानव व्यवहार एवं व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया के विश्लेषण में सहायक सिद्ध होती है, बल्कि इसके आधार पर सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विचलन, सामाजिक संघर्ष, प्रतियोगिता एवं कुछ हद तक सामाजिक परिवर्तन की भी व्याख्या की जा सकती है। तुलनात्मक वंचन, रिलेटिव डिप्रिवेशन। संदर्भ समूह के संदर्भ में तुलनात्मक वंचन का या अभाव की दशा की अवधारणा आरके मॉर्टन का बहुत ही प्रमुख समाजशास्त्रीय योगदान है। उन्होंने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में तुलनात्मक अभाव की अवधारणा पर विशेष प्रकाश डाला है। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि अमेरिका में जो विवाहित सिपाही थे वे अक्सर यह सोचते थे कि अविवाहित सिपाही की तुलना में उन्हें अधिक त्याग करना पड़ता है। उनके ऐसे सोचने का आधार यह था कि वे अपने पत्नी एवं बच्चों से दूर रहकर देश सेवा में लगे हुए थे। देश की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ ज़्यादा ही अपने पारिवारिक जीवन से वंचित रहना पड़ता था, अर्थात विवाहित सिपाहियों में एक तुलनात्मक अभाव की दशा की भावना कुछ अधिक ही दिखाई पड़ती थी। प्रत्येक समाज में ऐसे काफी लोग हैं जो अपने बारे में यह सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ों की भारी कमी है और उसे पाने का वे भरसक प्रयास करते हैं। यही प्रयास बहुत सी सामाजिक परेशानियों या समस्याओं की जड़ में है। लोग यह नहीं सोचते हैं कि उनके पास कौन कौन सी भौतिक सुख के साधन मौजूद हैं। चिंता उन्हें इस बात की होती है कि उनके पास किसी व्यक्ति की तुलना में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। यदि कोई परिवार किसी साधारण मोहल्ले के छोटे से मकान में रहता है तो वह अपने आप को तुलनात्मक रूप से विशेष अभाव की दृष्टि से नहीं पाता है, लेकिन वही परिवार किसी बड़े मोहल्ले में छोटे से मकान में रहता है तो वह बहुत ही अभाव की स्थिति महसूस करता है। कमी का विचार हमेशा सापेक्षिक होता है, और जिस व्यक्ति की तुलना में वह अपने आप में कमी देखता है उसे सापेक्षिक संदर्भ समूह यानी रिलेटिव रेफरेंस ग्रुप कहा जाएगा। इसी अभाव की भावना बहुत लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। जिस समाज में जितनी ही अधिक असमानता होगी उस समाज में तुलनात्मक अभाव की दशा में वो बिल्कुल उतनी ही अधिक होगी।